नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सुब्रत रॉय सहारा भारतीय बिजनेस का एक जाना पहचाना नाम, जिनके ग्रुप को साल 2004 में टाइम मैगजीन ने देश के दूसरे सबसे बड़े नौकरी देने वाले के रूप में जगह दी थी। उस वक्त सहारा में करीब 12 लाख कर्मचारी काम करते थे। रॉय ने अपने कारोबार की शुरुआत मात्र 2000 रुपए से की थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सुब्रत रॉय बुलंदियों को छूने लगे और देखते ही देखते वो करोड़ों के मालिक बन गए। फोर्ब्स ने साल 2015 में उनकी नेटवर्थ को अफवाहों के आधार पर करीब 10 अरब डॉलर बताया था, लेकिन आज अगर सहारा समूह की वेबसाइट के दावों को माना जाए तो समूह के पास करीब 2.59 लाख करोड़ की नेटवर्थ है। सुब्रत रॉय सहारा अपने पीछे पत्नी और दो बच्चे छोड़ गए। इस बात की पूरी संभावना है कि रॉय के निधन के बाद सहारा ग्रुप का कारोबार इन्हीं के हाथों में होगा। हालांकि सुब्रत रॉय ने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था और ना ही अभी सहारा ग्रुप की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने आया है। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पूरी करने की कोई तय समय सीमा नहीं है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि दोनों देश कुछ जटिल मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश जल्द से जल्द मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। बर्थवाल ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, हम किसी समय सीमा के तहत काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी प्रकृति थोड़ी जटिल है और जिनका दोनों देशों के लिए आर्थिक महत्व है। उन्होंने कहा, हम उन मुद्दों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, इसलिए ऐसी कोई समय सीमा नहीं है जिसके तहत हम कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव और समझौते के लिए भारत की मुख्य वार्ताकार निधि मणि त्रिपाठी ने कहा कि दोनों पक्ष अनउलझे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मुद्दों को जल्द सुलझाने का इरादा है। अब तक इस संबंध में 13 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। नीति आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा खासा अनुभव रखने वाले 4 फेलो को नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां 1 साल के लिए की गई हैं। बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार नीति आयोग के 4 नए सदस्य अनूप सिंह, ओपी अग्रवाल, अजय चौधरी और वी लक्ष्मी कुमारन महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी मुद्दों की समझ और विशेषज्ञता रखते हैं। इसके साथ उनके पास अच्छा खासा कार्य अनुभव भी है। सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में भी काम किया है। बयान के अनुसार अग्रवाल 1979 बैच के IAS अधिकारी हैं। उनके पास शहरी परिवहन के क्षेत्र में अच्छा खासा अनुभव और विशेषज्ञता है। चौधरी HCL के सह संस्थापकों में से एक हैं। उन्होंने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं लक्ष्मी कुमारन एक कानूनी विशेषज्ञ हैं और उनके पास कानून के क्षेत्र में 35 साल का अनुभव है। दैनिक उपभोग का सामान बनाने वाली कंपनी डाबर को अमेरिकी अदालत में राहत मिली है। उसकी दो विदेशी अनुषंगी इकाइयों डाबर इंटरनेशनल और डर्मोविवा स्किन एसेंशियल पर लगे आरोपों को हटा दिया गया है। अमेरिकी अदालत में दायर किए गए कई मुकदमों में एक प्रतिवादी ने आरोप लगाया था कि उनके हेयर रिलैक्सर उत्पादों के कारण गर्भाशय कैंसर और अन्य संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। डाबर ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इस मामले में उनकी तीसरी अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगी इकाई नमस्ते लेबोरेटरीज LLC के खिलाफ आरोप बने रहेंगे और इलिनोइस के उत्तरी जिले में स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय के समक्ष मुकदमा जारी रहेगा। बयान में कहा गया कि क्षेत्राधिकार की कमी के कारण डाबर इंटरनेशनल और डर्मोविवा को मामले से हटा दिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई DGTR ने स्वतः संज्ञान लेते हुए चीन की कंपनियों द्वारा रोलर चेन, कांच के दर्पण और फास्टनर सहित 4 उत्पादों की कथित डंपिंग की जांच शुरू की है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि व्यापार उपचार महानिदेशालय पड़ोसी देश से सस्ते आयात से MSME इकाइयों की रक्षा करना चाहते हैं। आमतौर पर डंपिंग रोधी जांच घरेलू उत्पादकों के आवेदन के आधार पर शुरू की जाती है, लेकिन चूंकि इन उद्योगों को व्यापार उपचार जांच में शामिल प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं थी, इसीलिए DGTR ने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू की है। व्यापार उपचार महानिदेशक अनंत स्वरूप ने कहा कि ये उत्पाद मुख्य रूप से छोटी और मझोली इकाइयों द्वारा बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन 4 उत्पादों का आयात कुल मिलाकर करीब 800 करोड़ रुपए का है और ये चीन से आ रहे हैं। इजराइल और गाजा के बीच जारी संघर्ष भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए एक चुनौती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को ये बात कही। IMEC की परिकल्पना परिवहन दक्षता बढ़ाने और लॉजिस्टिक लागत कम करने के लिए की गई है। IMEC को सबसे आशाजनक संपर्क परियोजनाओं में एक बताते हुए सीतारमण ने कहा कि इससे इसमें शामिल सभी देशों को फायदा होगा, क्योंकि ये परिवहन दक्षता को बढ़ाती है, लॉजिस्टिक लागत को कम करती है, आर्थिक एकता बढ़ाती है, रोजगार पैदा करती है। उन्होंने कहा कि परियोजना से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटेगा और एक स्वच्छ, सुरक्षित, बेहतर दुनिया बनाने में मदद मिलेगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।